نمد نسلیر رسولی کنیم اعوذ بالله من شیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دلچسپ سوال ہے کسی صاحب کا. شاہرخ سے قریب رب تعالیٰ کو پانے کے لیے کیا اندر کا سفر ضروری ہے؟ اگر مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جس چیز کو میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا خواہش کر رہا ہوں وہ کیا ہے، کیسی ہے، تو میری خواہش میں اتنی شدت کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ میں اس چیز کو حاصل کرنے کی راہ میں آنے والی مشکلات کو ہنسی خوشی سہ جاؤں. اس میں شک نہیں کہ رب تعالیٰ ہماری شاہرخ کے قریب ہے، لیکن رب جو اتنا قریب ہے اس کو بہت کم لوگ حاصل کر پاتے ہیں، اس کے قرب کو بہت ہی کم لوگ حاصل کر پاتے ہیں. تو اگر ہمیں واقعی رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے قریب جانے کے لیے ہمارے دل میں ایک پختہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے اور ہم سے وہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنا عظیم ہے وہ. اس کی اس عظمت کا ایک ہلکا سا عکس صرف ہم اسی وقت دیکھ پائیں گے جب ہم اپنے آپ کو پہچاننے لگیں گے. اپنی فزیکل بینگ کو تو ہم سبھی پہچانتے ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں تو ایک فریکشن آف اے سیکنڈ میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارا عکس ہے، امیج ہے ہمارا. اگر اپنی تصویر کو دیکھیں تو فریکشن آف اے سیکنڈ ہی چاہیے پہچاننے میں کہ یہ میں ہوں. فزیکل بینگ کو تو ہم سبھی پہچان جاتے ہیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اندر کا سفر ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، حدیث ہے یہ، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فزیکل سینس میں نہیں ویسے پہچاننے لگے کہ ہم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم وجود میں آئے کیسے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اگر یہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم وجود میں کیسے آئے، یہیں اسی جگہ گفتگو ہوتی رہی ہے اس موضوع پر بھی کہ انسان کے وجود میں آنے کا عمل کیا ہے سارا، اس پہ صرف ہم غور کر لیں फिर अगर अपनी जिस्म पर गौर करें कि ये किस तरह से वजूद में आया होगा, एक एक उज्व हमारा, अगर उसकी साख्त और उसके फंक्शंस, उन पर गौर करें, तो फिर जो यकीन पैदा होता है रब ताला पर, वो बड़ा पुख्ता है। और अगर एक कदम उससे आगे हम चले जाएं कि हमें जिंदा रखने के लिए क्या क्या नेमतें प्रोवाइड की जाती हैं हमें, तो फिर रब के मेहरबान होने का एक हल्का सा अंदाजा होने लगता है कि हमारा रब कितना मेहरबान है। उस सब के बाद फिर जब हम अल्लाह को हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसके कुर्ब को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे इरादे में मजबूती होती है और इस राह में पेश आने वाली तमाम दिक्कतों को और मुश्किलात को हम हंस के सह जाते हैं। बहुत सख्तियों में से गुजरना पड़ता है रब के दोस्ती को हासिल करने के लिए, और अक्सर तो ये होता है कि लोगों के पांव डगमगा जाते हैं, लोग रास्ते ही से छोड़कर एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इस इरादे में पर कायम रहते हैं कि हमें रब की दोस्ती चाहिए, उन मुश्किलात से गुजर जाते हैं, तो फिर जिस किस्म की जिंदगी को वो एंजॉय करते हैं, वो गालिबन अल्लामा इकबाल का शायद शेर है कि मैं बंदगी को कुदरत के बदले भी नहीं कभी छोड़ू, तो उस मकाम पर चला जाता है। तो ये अंदर का सफर, ये असल में एक एक्सप्रेशन है, अंदर का तो सफर कोई है नहीं, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है और बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है। ये अंदर का सफर नाम ही इस बात का है कि अल्लाह ताला के अहकामात पर पूरी तरह अमल कर ले। तो ये जो अंदर के सफर की टर्म रिवाज पाई है, ये मेरे ख्याल में ऐसा हुआ होगा कि शुरू ही से, क्योंकि ये खेल है दो चीजों का, कल्ब और नफ्स, और दोनों एक दूसरे के 180 डिग्रीज अपोजिट है। कल्ब नेकी और अच्छाई का संबल है और नफ्स बुराई और अल्लाह से सरकशी का सिंबल है। तो एक दूसरे के 180 डिग्रीज अपोजिट है, इनके दरमियान जो लड़ाई है उसी पर मुनहसर है कि रब की दोस्ती मिलेगी या इंसान रब से दूर हो जाएगा। ये जो मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कि तौबा, ये जो डेफिनेशन मैं अर्ज करता हूं कि तौबा असल में जफा से वफा की तरफ के सफर का नाम है। तो नफ्स भाई से जफा है और कल्ब भाई से वफा है रब के साथ। तो वो जो अंदर का अंदर की लड़ाई है हमारी नफ्स और कल्ब के दरमियान, वो अंदर का सफर है। ये गालिबन उससे जब भी ये कहीं इंट्रोड्यूस हुई ये टर्म अंदर के सफर की, तो उसके पीछे ये दो चीजें हैं कि मैं क्या हूं ये जानना, जिसको मैंने हदीस के अल्फाज में अपने आप को पहचानने की बात, और कल्ब और नफ्स के दरमियान जो जंग है उसमें नफ्स को शिकस्त दे देना, ये अंदर का सफर है। जिस तरह जंग में कोलेट्रल डैमेज भी होता है, हम दुश्मन के यहां बमबारी करते हैं या रॉकेटिंग करते हैं कि उसकी वार एफर्ट को हम नुकसान पहुंचा दें, उसको रिड्यूस कर दें, उस प्रोसेस में इर्द गिर्द की चीजों को भी नुकसान होता है उस बम्बार्डमेंट और उस रॉकेटिंग से। और जैसे आप जानते हैं कि इसको कोलेट्रल डैमेज हम कहते हैं। ये और बात है कि अब स्मार्ट एमुनिशन के नाम से इस किस्म के एमुनिशन ऐसा इजाद हो गया जिसमें कोलेट्रल डैमेज तकरीबन न होने के बराबर होता है, कि वो पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड है और वो सिर्फ हिट ही उस जगह को करता है जहां उसने हिट करना है, तो कोलेट्रल डैमेज नहीं होता। तो नफ्स के खिलाफ जब हम जंग लड़ते हैं तो उसके जंग लड़ने का आसान तरीन मेथड यह है कि नफ्स जो कुछ कहे उसकी मुखालफत कर दी जाए। नफ्स जो कुछ कहे उसके बरक्स चला जाए। तो इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं कोलेट्रल डैमेज होने लगता है, लेकिन उसको अनअवॉइडेबल समझ के एक्सेप्ट कर लें अगर हम, कामयाबी यकीनी हो जाती है अगर ये गुर हमने इस्तेमाल कर लिया कि नफ्स की नफी करनी है हमें, जो कुछ नफ्स कहे उसके बिल्कुल बरक्स जाना है, कामयाबी हो जाएगी। तो इन साहब का अगला सवाल, तो उसका जवाब मैं इसी बात में दे चुका कि ये अंदर का सफर दरअसल है क्या, और कैसे पता चलेगा कि हमारा अंदर का सफर शुरू हो चुका। ये बात अक्सर बेशतर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूं कि हमारे जहन में ये जो सवाल उठता है कि जैसे इस सवाल का ये हिस्सा कि हमारे अंदर का सफर शुरू हो चुका, इस राह का एक असूल ये है कि जिस आदमी ने ये सोचा कि मुझे क्या मिला अब तक, मैं कहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैं इस राह पर चला या नहीं चला, उसको सारी उम्र कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो जिसने सिर्फ अल्लाह को पुकारा कि मैं अपने रब को पुकार रहा हूं कि वो पुकारे जाने के लायक है, मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने रब को पुकारता जाऊं, मैं कहां पहुंचा, मुझे क्या मिला, जो आदमी इससे दूर चला गया, भूल गया इसको, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो हम अपना काम करें कि अपने रब को पुकारते रहें, उस पुकार का जवाब देना रब के जिम्मे है, वो उसका बेहतरीन इनाम देता है। तो इससे बेपरवाह हो जाइए कि हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है. इनका एक सवाल और अच्छा सवाल ये है, क्या जब किसी बंदे को रब मिल जाता है तो वो खामोश हो जाता है? इस सफर में कई मकाम आएंगे, जब इंसान इस सफर पर निकलता है और अगर उसके मुर्शिद बहुत इल्म में बहुत आगे हैं तो वो दो तरह की एहतियात एक्सरसाइज करेंगे. एक तो इल्म बहुत मैयत डोज में देंगे, ये देखकर कि मेरे इस शागिर्द की रूहानी कैफियत क्या है, इसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या है. वो यूं ही अटकल पच्चू उसको इल्म नहीं सिखाना शुरू करेंगे. तो बड़ी मैयत डोज देते हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता. ये जो हम सांप के काटे का इलाज करते हैं उसको तरियाक कहते हैं, वो जहर होता, वो भी जहर ही है असल में, लेकिन तरियाक का काम कर रहा. तो वो तरियाक कैसे तैयार होता है कि घोड़े को सांप के जहर की एक बहुत मामूली डोज, इंतहाई मामूली, वो इंजेक्ट की जाती है और वक्फे वक्फे से वो इंजेक्ट होती है उसको. तो उसकी बॉडी जब उसकी आदी हो जाती है सांप के जहर की, तो फिर उस डोज को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है. बढ़ाते बढ़ाते उसको पूरी डोज पर ले जाते हैं और फिर उस घोड़े से हासिल होने वाली जो दवा है वो तरियाक का काम करती है कि सांप के काटे का इलाज है वो. तो इसी तरह जैसे तरियाक तैयार होता है तो मुर्शिद अपने शागिर्द को बहुत मैयत डोज देते हैं आहिस्ता आहिस्ता और फिर रफ्ता रफ्ता उसको बढ़ाते रहते हैं. तो एक तो जो समझदार मुर्शिद हैं वो ये इससे काम लेते हैं. दूसरी चीज ये है कि वो अपने शागिर्द पर एक बात बड़ी शिद्दत से उस पर जोर देते हैं कि तुमने इसका जिक्र नहीं करना कि मैं कभी अल्लाह को पुकारता भी हूं. तो अपने जिक्र अजकार, अपनी इबादत, अपना जोहद, इसको तुमने बड़ी कामयाबी से छुपाना है कि देखने वाले इसी धोखे में रहें कि तुमने कभी रब को पुकारा ही नहीं है. तो ये जो कंसीलमेंट है इस पे बड़ा जोर देते हैं वो कि अपने आप को छुपा के रखो, इसका जिक्र कहीं ना करो. बल्कि जो ज्यादा सख्त है मुर्शिद तो वो तो इस पे जोर देते हैं कि अपनी जात से भी छुपा लो कि तुम रब को पुकारते हो. उसमें एक बड़ी हिकमत छुपी है. तो ये इब्तिदा का मकाम है कि जब इंसान अल्लाह के कुर्ब की राह पर चलता है कि मैं उसका कुर्ब हासिल कर लूं, उस राह पर जब चलना शुरू करता है तो ये इब्तिदा में ये मकाम आता है. लेकिन जब वो इस रास्ते को काफी तय कर लेता है और ऐसे मकाम पर जाता है जहां उसके मुशाहदा उसका खुल जाता है, उस पे वारदात खुल जाती है, वो चीजों को बातनी आंख से देखने लगता है, तो तो जब वो नजारे कारखाने कुदरत के कुछ हिस्से को देखना शुरू करता है तो अल्लाह की अजमत का एक एहसास बड़ी शिद्दत से पैदा होता है। हालांकि वो अल्लाह की अजमत का एक छोटा सा फ्रैक्शनल पार्ट भी नहीं होता जिसको वो देख रहा होता, लेकिन वो इतना टाइनी फ्रैक्शनल पार्ट अल्लाह की अजमत का देखकर वो हैरत में गुम होता है, जिसको मकामे हैरत कहते हैं, आलमे हैरत कहते हैं। तो उस मकाम पर जहां जाके उसकी हैरत के मारे जुबान बंद हो जाए, वो मकामे हैरत है, और जिस आलम में वो एंटर हो गया वो आलमे हैरत है। वो तो वहां इंसान की जुबान अस खुद बगैर किसी के गाइड किए हुए वो बंद हो जाती है, वो मकामे हैरत है, और फिर उसका उस आलमे हैरत में सफर शुरू हो जाता है। उसके बाद के फिर और दूसरे आलम आते हैं। ये जो जुबान बंद होती है जिसका आपने जिक्र किया, ये वो मकाम नहीं कि रब मिल जाए तो जुबान बंद होती है। ये तो मकाम हैरत है जहां जुबान बंद हो जाएगी। इससे आगे के जब सफर शुरू हो जाएंगे आलमे लाहूत आलमे नासूत, जब उन आलमों का सफर कर लेगा तो फिर उस मकाम पर आता है कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ रागिब करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए उसको इजाजत हो जाती है कि वो कुछ चीजों को बयान करना शुरू कर दे। वहां जुबान खुल जाएगी उसकी, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ चीजें होती हैं, पूरी तरह कभी जुबान नहीं खोलेगा बंदा। उसके पीछे एक बात सिर्फ ये होती है कि वो रब की तरफ रागिब कर ले लोगों को। जब वो बातें सुनाता है, अपने तजर्बात बताता है लोगों को, अपने उस सफर का आलम बताता है, तो लोग इंस्पायर होते हैं, तो नेकी की तरफ आते हैं, क्योंकि रब के कुर्ब का रास्ता जाता ही नेकी से है। तो जब तक के इंसान नेकी इख्तियार नहीं करता, इबादत के साथ उसका इबादत का नतीजा नेकी की तरफ जाएगा, वो रास्ता गुजरता ही नेकी से है। तो वो लोगों को नेकी की तरफ बुलाता है, और पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन ये होता है कि जो कुछ मैंने ये देखा तुम भी देख सकते हो, इस राह की तरफ आ जाओ। तो ये खामोशी का मकाम वो नहीं है जहां रब का कुर्ब हासिल हो गया हो फिर खामोश होगा, वहां तो बयान शुरू हो जाता है इंसान का। ये मकाम हैरत पर इंसान की जुबान बंद होती है। इनका अगला सवाल इसी से मुताल्लिक है, तो जवाब मेरे ख्याल है मेरी गुफ्तगू में आ गया कि इस खामोशी की क्या वजह है, क्या वो बंदा एब्जॉर्ब करने के अमल और कैफियत से गुजर रहा होता है, तो मैंने अर्ज कर दिया आपसे। एक सवाल ये है कि जनाब हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, जनाब हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से पहले कौन सी फिका थी। दूसरा सवाल ये है कि नई फिका लिखने की जरूरत पेश क्यों आई। ये गालिबन कहीं पर दो लफ्जों का कन्फ्यूजन हमें हो रहा है, मेरा ख्याल है सवाल से ही अंदाजा होता है कि हम फिका और शरीयत इनको कहीं मिक्स कर न कर रहे हो हम। ये दोनों दो मुख्तलिफ चीजें हैं। शरीयत तो इंसान को बुनियाद फराहम करती है जिंदा रहने के असलूब की, या यूं कहिए कि शरीयत इस्लाम के अहकामात के तहत जिंदा रहने का नाम है। अरबी जुबान में कुरान पाक का नजूल हुआ था, अहकामात अरबी जुबान में थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कुरान पाक का नजूल हो रहा था इमामों के इमाम जनाब हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, और वो अपने सहाबा को तालीम दे देते थे। एक तो जुबानी कलामी एक्सप्लेन कर देते थे, तालीम दे देते थे, इसलिए कि इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम आजम भी कहते। जरूरत नहीं पड़ती थी किसी एक्सप्लेनेशन की। तो जुबानी तालीम के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज हासिल था सहाबा कराम को, वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी सामने थी। तो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा थे, सीखते थे। शरीयत उन अहकामात का नाम है जिसकी तालीम कुरान देता है कि इंसान को इस तरह से इस ढब पर जिंदगी गुजारनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम कहिए आप। लेकिन दरहकीकत फिकह जो है वो एक्सप्लेनेशन है शरीयत की, कि जो वो नुकात जो हम अजमियों पर क्लियर नहीं थे उनको एक्सप्लेन किया है इन हस्तियों ने जिनका नाम हम ले रहे थे, जनाब हजरत इमाम अबू हनीफा, जनाब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, जनाब हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। इन सबको ये इन्होंने हम पर एहसान किया कि शरीयत को एक्सप्लेन किया। अब वो जो एक्सप्लेनेशन है शरीयत की, उसमें वो नुकात जो क्लियर नहीं होते थे, उस एक्सप्लेनेशन को फिका कहा जाता है। तो जिस हम में से जिन लोगों को एक एक्सप्लेनेशन पसंद आई, हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। जिन साहबान को दूसरे किसी इमाम रहमतुल्लाह अलैह साहब की एक्सप्लेनेशन पसंद आई, उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो यूं ये फिका वजूद में आनी शुरू हो गई, इसी से आगे मसलक कायम हुए। इसकी जरूरत इसलिए पेश आई थी कि हम अजमी अरबी से वाकिफ नहीं। तो अरबी बहुत फसी व बलीग जुबान है, उसमें इन इमामीन ने महारत हासिल की और उसको फिर एक्सप्लेन किया अपने इल्म की रोशनी में। तो यूं ये इसकी जरूरत पेश आ गई थी। एक सवाल है कि जो मुरीद ये गुमान रखे हुए हो कि मुझे जो कुछ भी अता होता है वो मेरे मुर्शिद के वसीले ही से अता होता है और जो इल्म जहां से भी मिले वो मुर्शिद ही के सदके है, तो ऐसे मुरीद को किसी दूसरे शख्स या वली अल्लाह का तालिब होना कैसा है? देखिए, हमारे अकायद होते तो दुरुस्त हैं, लेकिन जब उन्हें हम बयान करते हैं तो अल्फाज शायद हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे सुनने वाले को धोखा होने लगता है। अब ये जो हम कहते हैं कि मुरीद को जो कुछ अता होता है वो मुर्शिद के वसीले से अता होता है, अगर इसी बात को हम यूं कह दें कि ये हमारे मुर्शिद की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इल्म सिखाया जिससे हम इस काबिल हो गए कि अच्छे और बुरे की तमीज सीख सकें, और मुर्शिद ने हमें इल्म अता किया जिसकी निस्बत से हमें अकल अता हुई कि हम अच्छों में से बहुत अच्छा चुन सकें। बात तो दुरुस्त है अगर हम ये कह दें कि मुर्शिद के वसीले से मिला, लेकिन ऐसी बात कही क्यों जाए जिससे कंफ्यूजन्स पैदा हो जाए? तो मुर्शिद हमें सिखाते हैं क्या अच्छा और क्या बुरा, उससे हमारे अंदर विजडम पैदा होती है और उस विजडम के जरिए हम अच्छों में से ज्यादा अच्छा चुनने के लायक हो जाते हैं। मुर्शिद हमें कुछ देता नहीं है, सिर्फ हमें सिखाता है। देता रब है सब कुछ, अता रब करता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए हमें। मुर्शिद हमें जिंदगी गुजारने के ढब सिखाता है, नेकी की राह पे चलना सिखाता है। चलते हम खुद हैं, मेहनत हमारी है, मुर्शिद सिर्फ हमें गाइड कर देते हैं, हमारी गलतियों को पॉइंट आउट कर देते हैं, लेकिन मुर्शिद के कहे पर अमल करना ना करना खुद हमारा अपना फेल है। बसा औकात होता यह है कि मुर्शिद के कही हुई बातों में से सिर्फ मैं उन बातों पर अमल करता हूं जो बातें मुझे सूट करती हैं या जिन पर अमल करना चाहता हूं, बाकी को मैं छोड़ देता हूं। नताइज वो नहीं पैदा होते जो होने चाहिए, तो जब वो नताइज पैदा नहीं होते तो हम शिकायत करते हैं कि इन साहब के पास मैं इतने अरसे से जा रहा हूं अपने मुर्शिद के पास और मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं तो कुछ सीख नहीं सका, मैंने तो कुछ देखा नहीं। हालांकि फॉल्ट मेरा अपना है कि मैंने 100% उनकी बात पे अमल नहीं किया। हमें अपने जहन में क्लियर रहना चाहिए कि क्या चीज क्या है, कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्कुल क्लियर हों और उसके मुताबिक हम अमल करें। इन्होंने आगे फरमाया कि जो इल्म जहां से भी मिले वो मुर्शिद ही के सदके है। ये अल्फाज थोड़े से हमें मोहतात रहना चाहिए। मुर्शिद इसमें जरिया बने हैं हमारा कि उन्होंने हमें इनिशियली सिखाया है और हम इस लायक हो गए हैं कि हम ये पहचान पाएं कि फला साहिब इल्म है, इससे हमें इल्म मिल जाएगा। तो ऐसे मुरीद को किसी दूसरे शख्स या वली अल्लाह का तालिब होना कैसा है? इल्म तो जहां से भी मिले लेना चाहिए। बड़े बड़े नाम हैं वलायत में, मैंने पहले भी कई बार मिसाल दी, जनाब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे इल्म की हद तक ये ऐसे वली अल्लाह हैं, ऐसे साहिब इल्म हैं जिन्होंने मैक्सिमम असातिज़ा से फैज हासिल किया है, गालिबन 105। तो मुरीद तो वो अपने मुर्शिद के थे, एक ही साहब के, लेकिन इल्म की तलब मुर्शिद की इजाजत से उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर ले गई। तो 105 साहिबान इल्म से उन्होंने इक्तसाब फैज किया है। तो इल्म जहां से भी मिले लेना चाहिए, और अगर हमारे मुर्शिद सही आदमी है, अच्छे आदमी हैं, और होते हैं मुर्शिद, तभी तो मुर्शिद बने कि वो अच्छे हैं, तो वो आपको खुद इजाजत देंगे, बल्कि गाइड कर देंगे कि फलां जगह चले जाओ, वो इल्मे फिका के माहिर हैं, उन्हें इल्मे फिका पर दस्तरस है, फला साहब इल्मे हदीस पर अबूर रखते हैं, फला साहब इल्मे कुरान पर अबूर रखते हैं, वहां चले जाओ और सीखो। तो मुरीद तो एक ही आदमी का रहा जिसके हाथ पर बैत की, लेकिन शागिर्दी उन्होंने बहुत सौ की कर ली, और वहां से इक्तसाब फैज कर लिया, इल्म हासिल कर लिया वहां से। तो इल्म तो जहां से मिले ले लेना चाहिए। ये अगला सवाल है कि कभी कभी बातों बातों में मजाकन बंदा कुछ ऐसा कह देता है जिसका उसे ना इल्म है ना कुछ और, लेकिन अगली घड़ी हैरानगी होती है जब वैसा ही हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्या इस बंदे का रूहानी लताइफ से कोई ताल्लुक है? मैं अक्सर बेशतर ये अर्ज करता हूं कि हम सब में रूहानियत मौजूद है, सब में। फर्क यह है कि हम में से कुछ लोग उस पर मेहनत करते हैं और उसे डेवलप कर लेते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि बलूचिस्तान मिनरल्स से भरा पड़ा, वहां मादनियात हैं, लेकिन हम निकाल नहीं पाए अब तक। तो मादनियात के वहां मौजूद होने से तो इनकार नहीं हो सकता, मौजूद हैं, हमारी नालायकी है कि हम उन मादनियात को वहां से निकाल नहीं पाए। तो रूहानियत हमारे अंदर मौजूद है, हम अपनी सुस्ती की वजह से उसको डेवलप न कर पाए तो और बात है, लेकिन उस रूहानियत की मौजूदगी का इजहार कहीं ना कहीं किसी न किसी रंग में होता रहता है। जैसे ये इन साहब ने ये सवाल पूछा कि अनजाने में बात कह देते हैं और वो पूरी हो जाती है। तो चीज तो मौजूद है, बेशक हमें अदराक ना हो, उसके असरात जाहिर होते हैं। रूहानियत को डेवलप करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि इंसान नेकी की तरफ चला जाए। दूसरा सवाल इनका है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी बंदे को बिल्कुल भी खोना ना चाहें लेकिन बार बार उसे खो जाने का डर सा लगा रहता है। बात यह है कि मुझे पैसा बड़ा अजीज है, उससे इतनी मोहब्बत है मुझे कि मैं उसे किसी तरह खोना नहीं चाहता। तो जब इतनी मोहब्बत है मुझे पैसे से तो मुझे धड़का लगा रहता है कि ये मैंने अपनी बेड साइड टेबल की ड्रॉअर में जो वॉलेट अपना रखा है, ये ना हो कि रात को कोई घर में आ जाए और ये मेरा वॉलेट उठा के ले जाए। ये डर एक कुदरती अमर है। जो चीज हमें जितनी ज्यादा अजीज होती है हम उसे खोना नहीं चाहते, तो ये खौफ हमारे जहन पे रहता है कि ये खो ना जाए। तो उस वॉलेट को बचाने के लिए कि रात को कोई आके इस वॉलेट को ले ना जाए, तो मैं अपने बेडरूम के दरवाजे को भी जो लॉक करूंगा और उस लॉक को 3 बार चेक करूंगा, घर के मेन डोर को भी, खिड़कियों को भी, सबको रात को चेक करके फिर सोऊंगा। लेकिन उस खौफ की वजह से मेरी नींद कच्ची रहेगी कि जरा सा खटका होगा तो मेरी आंख खुल जाएगी कि कोई आ तो नहीं गया मेरा वॉलेट लेने के लिए। जेब में मैं पैसे रखूंगा तो उसको मैं पहले एक मैली कुचैली सी थैली में डालूंगा, फिर उस थैली को लपेट के उसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा के एक दूसरी मैली कुचैली थैली में डालूंगा ताकि लोगों को पता न चले इसमें शाह साहब के पैसे हैं। फिर उसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा के तो ट्राउजर की किसी खुफिया जेब में रखूंगा उसे, और उसके बावजूद मुझे डर रहेगा कि आदमी घूर कर मुझे देख रहा है कहीं ये पैसे न ले ले मेरे। तो ये कुदरती अमर है, इंसान की नफ्सियात है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इंसान चीजों से बेपरवाह हो जाए। वैसे ही कि रब ताला ने अता की है, चली जाएगी तो रब दोबारा दे देगा, इसमें क्या है। मैं कौन सा कोई पैदाइश के वक्त हाथ में गठरी बांध कर लाया था जिसका डर हो मुझे। अल्लाह ने दिया था ले जाएगा फिर दे देगा अल्लाह, उसमें क्या है। तो आसान सा हल है ये। ये अगला इनका सवाल जाती है तो इसलिए न मैं उसे पढ़ रहा हूं और ना उसका हल बता रहा हूं। इनके लिए गुजारिश ये है कि यहां दुआ के दौरान जब तशरीफ लाएंगे मेरे पास मुझसे ये सवाल कर लीजिए, रिमाइंड करा के कि इस तरह ये इस मजलिस में बात पूछी थी आपने, तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। ये पर्सनल है आपका। इन साहब की हैंड राइटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही है। आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, मैं नहीं समझ पा रहा क्या लिखा है, बट आई हैव ये आखिर पर इनका शायद जुमला सवाल का शायद इन्होंने उसको लिख दिया कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई मेमोरी। ये सिर्फ आपके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, दूसरों के लिए शायद एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि मैन टू मैन वेरी कर जाती है बात। आप सूरह आले इमरान हिफ्ज कर लीजिए, आपकी मेमोरी से तेज हो जाएगी। मौत एक हकीकत है लेकिन मुझे इस हकीकत में कोई मायने नजर आते हैं। कौन दर हक है, कौन इस हकीकत को कैसे मरने से पहले महसूस किया जाए। अब इस सवाल को अगर आप वाजे कर दें और सही तरीके से लिख दें तो मैं जरूर इसका जवाब दे दूंगा। इसको दोबारा लिखवा लीजिए, क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये साहब। ये सवाल अभी बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे। बशर्ते जिंदगी, उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।